मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 23 दिसंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय की घोषणा मैं शुरू में नहीं कर रहा हूं, आखिरी में जिस तरीके से वक्त बचेगा, जितना वक्त बचेगा उसके हिसाब से मैं समय का चयन करूंगा। आइए पहले शुरुआत करते हैं कुछ मुख्य घटनाओं से। अखबारों में आज एक खबर छपी है, छोटी सी एक इंटरव्यू के फॉर्म में खबर है, हो सकता है कि सभी अखबारों में ये ना हो। एक शब्द है पॉजिटिव पे सिस्टम, पॉजिटिव पे सिस्टम जो 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाला है। तो अब बस 2021 में हम लोग एंटर ही कर रहे हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम, आपने सिविल सर्विस के प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस देखे होंगे कि इस तरीके के शब्दावलियों पर पूछ लिया जाता है कि ये शब्द अखबारों में चर्चा में आया था तो ये क्या है। तो ये क्या है, देखिए, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, यानी कि सही भी आप कह सकते हैं। पे का मतलब है भुगतान, सिस्टम, प्रणाली, यानी कि एक ऐसी प्रणाली में शब्द के आधार पर कैसे उसके अर्थ तक पहुंचा जा सकता है, अनुमान लगा करके ही सही। मैं उस सिस्टम को आपको बता रहा हूं, उसके सूत्र को बता रहा हूं। पॉजिटिव का मतलब हो गया सही, पे का मतलब हो गया भुगतान, और सिस्टम का मतलब हो गया प्रणाली, यानी कि एक ऐसी प्रणाली जिसके जरिए सही भुगतान हो सके या भुगतान को सही किया जा सके, एक सामान्य सा अर्थ हुआ। अब आप देखिए कि जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने किसी को चेक काट करके दिया, 50,000 रुपए का चेक काट करके दे दिया, किसी व्यक्ति को दे दिया, और स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति बैंक में जाएगा और उस चेक को जमा कर देगा। अब बैंक चेक करेगा कि हाँ ये जो चेक आया, चेक करेगा मतलब जांच पड़ताल करेगा कि हाँ ये जो चेक है सही है कि नहीं है, इसका नंबर सही है कि नहीं है, इस पर जो सिग्नेचर किए गए हैं वो सही है कि नहीं है, और इसके अकाउंट में पैसा है या नहीं, वो सब चेक कर लेगा। इसका मतलब है कि उस धन का भुगतान किया जा सकता है, और अभी तक ऐसा ही होता आया है। इसमें यह व्यवस्था की गई है, अब इसे समझिए कि अब उसमें हो क्या रहा है कि कभी कभी फ्रॉड भी हो जा रहे हैं। आजकल आप सुनते होंगे इस तरह के फ्रॉड होने लगे हैं, पहले भी होते थे, अब ज्यादा होने लगे हैं। तो अभी यह जो प्रणाली है क्या करेगी कि जैसे मान लीजिए, अच्छा, 50,000 रुपए का आपने चेक काट करके किसी को दे दिया, सब कुछ ठीक ठाक पाया गया, तो अब जो बैंक है वो आपसे पूछेगा कि भैया हमारे पास देखो इस नंबर का चेक आया है, इसके नाम से ये चेक है, क्या हम इसको भुगतान कर दें, ये सही है? तो आप इधर से बता देंगे कि हाँ हाँ ठीक है, ये मैंने ही काट करके दिया है, आप इसका भुगतान कर दीजिए, तो जो बैंक है उस धन का भुगतान कर देगा। इसका मतलब हुआ ना कि सही भुगतान हो गया, गड़बड़ी अब नहीं होगी। तो ये सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाला है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है, वो ये है कि क्या ये कंपलसरी है, क्या 50,000 रुपए और उससे ऊपर के जितने भी भुगतान होंगे, 50,000 से ऊपर के भुगतान के लिए लागू होगा, याद रखिए, क्या इसी प्रणाली पर होंगे? ऐसा नहीं। अभी यह जो प्रणाली है यह इस रूप में होगी कि बकायदे आपको से पूछा जाएगा कि क्या आप इस प्रणाली को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जब आप कहेंगे कि हां मैं इस प्रणाली को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तभी आपके चेक के बारे में पूछा जाएगा, अदरवाइज आपसे नहीं पूछा जाएगा, चेक का सीधे भुगतान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये शब्द है पॉजिटिव पे सिस्टम, बस आपको दिमाग में थोड़ा सा ही रखना है, बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ना लिखना और याद करना नहीं है। फ्रेंड्स, दो तीन दिनों से आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, चैनल्स पर भी देख रहे हैं, और सरकार इसके बारे में अपना स्टेटमेंट भी दे रही है कि ब्रिटेन में अब एक नया कोरोना स्ट्रेन मिला है, नया स्ट्रेन मिला है जिसका नाम है B117। इसके दो नाम है B117, या इसका जो दूसरा नाम है वो है BUI फिर 2020.12/01। आप जिसको भी चाहे याद रख लें या दिमाग में थोड़ा सा इसका इंप्रेशन लेकर के चले, ये कोरोना का नया रूप है आप कह लीजिए, जो ब्रिटेन में काफी फैल गया है और यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गया है। इसको लेकर के दुनिया थोड़ी सी चिंतित भी है। आपने देखा कि भारत सरकार ने भी कदम उठाते हुए ब्रिटेन से जो फ्लाइट आ रही हैं उनको अभी 31 दिसंबर तक बैन कर दिया है, और ब्रिटेन से इस बीच में एक महीने के अंदर जो भारत में लोग आए हुए जिनकी संख्या लगभग 50,000 है, उनका पता लगा करके बाकायदे उनकी कोरोना टेस्टिंग होगी, उनके साथ दूसरे जो यात्रियों ने सफ़र किया है उनको भी क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं और पूरी दुनिया इसको लेकर के थोड़ी सी चिंतित हो गई है। लेकिन यहाँ एक बात और है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है और दूसरे जो इसके एक्सपर्ट हैं वे भी यह बात कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है। ये जो नया जो स्ट्रेन आया है, कोरोना का नया रूप कह लीजिए, नया अवतार कह लीजिए, ये उतना खतरनाक नहीं है। ये तेजी से तो बहुत फैलता है, अभी जो COVID-19 था उससे भी तेजी से फैलेगा, फैलने की रफ्तार उसकी तुलना में 70% अधिक है और अधिक है। लेकिन ये उतना घातक नहीं है, मतलब मृत्यु की संभावनाएं आशंकाएं उसकी तुलना में जो अभी COVID-19 था उसकी तुलना में कम है। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि अभी जो वैक्सीन बन रही है ये वैक्सीन उसमें भी कारगर होगी, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और भारत ने भी इसी तरह का वक्तव्य दिया है कि इसमें घबराने की बात नहीं है, जो भी प्रिकॉशन ले जानी चाहिए वो हम सब ले रहे हैं। दोस्तों, कल मैंने भारत और नेपाल के संबंधों को उस आधार पर नहीं बल्कि इस तरीके से कि किस तरीके से नेपाल में संसद भंग कर दी गई है और नए चुनाव होंगे उसको लेकर के आपसे कुछ बातें की थी। आज एक आर्टिकल आया है दैनिक भास्कर में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का, वो खासकर जो हमारे पड़ोसी देश चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो उनके बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं और उनको बहुत ही रूट लेवल की जानकारी है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी इन देशों के बारे में या उधर पूरे के पूरे जो मध्य पश्चिम एशिया के जो देश हैं उनके बारे में अगर कोई लेख इनका मिलता है तो आप जरूर पढ़ें, आपको उससे एक समझ विकसित होगी। मैं तथ्यों की बात तो नहीं कह रहा हूं लेकिन एक समझ जरूर विकसित होगी। इस लेख में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है वो दो भागों से मिलकर, दो अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी हैं, लेनिनवाद और माओवाद, और वो मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई थी और कैसे उनमें आपस में काफ़ी बड़े मतभेद थे जिसकी वजह से संसद भंग हो गई है और ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, भारत की क्या स्थिति। यहां मैं खासकर इस आर्टिकल को लेकर के जो एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका जो अंतिम पैरा है और अंतिम पैरा के भी जो आखिरी के 8-10 लाइन है वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो कोई भी लेख होता है वो पूरा लेख आपके काम का नहीं होता, हो सकता है कि उसकी एक लाइन आपके काम की हो सकता है कि उसका एक पैरा आपके काम का हो, या हो सकता है कि उसका पूरा लेख आपके काम का हो और उसमें से आप 4-5 अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास वह दृष्टि है या नहीं, और यह दृष्टि आपके पास होनी चाहिए। खासकर अभी जो मैं फिलहाल बात कर रहा हूं उसका मकसद है आपके अंदर उस तरह की दृष्टि पैदा करने की। जब आप इस लास्ट पैरा के बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो देखिए वो क्या लिखते हैं। भारत नेपाल सीमा लगभग 1800 किलोमीटर की है, मुश्किल से दो स्थान सुपरिभाषित नहीं है, मतलब दो ऐसे स्थान हैं जिनकी सीमा रेखा आप कह लीजिए कि थोड़ी सी अदृश्य सी है, सुपरिभाषित नहीं है कहने का मतलब है। दोनों देशों में आवागमन और व्यापार मुक्त है, बिना आप वीजा के जा सकते हैं। आवागमन मुक्त है का मतलब है बिना वीजा के आप आ जा सकते हैं। नेपाल के लगभग 80 लाख लोग भारत में रहते हैं। भारत की फौज में 7 गोरखा रेजिमेंट और 60,000 नेपाली सैनिक हैं। नेपाल की सरकार अब उसे चाहे हिंदू राष्ट्र न कहे लेकिन नेपाल क्या है यह सभी को पता है। चीन जो कर ले भारत नेपाल संबंध अटल है, ये इनका पैरा है। अब आप देखिए कि इस छोटे से कुछ ही पंक्तियों में, छोटे से पैरा की कुछ ही पंक्तियों में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता दी हैं कि जहां संबंध इतने निकट के हों, यानी यूं कह लीजिए कि ऐसा लग रहा है जैसे कि दूध और पानी या दूध और शक्कर एक दूसरे से मिलजुल गए हों, तो उन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है चीन चाहे जो भी कर ले। क्योंकि आपको मालूम है कि चीन लगातार नेपाल पर अपना दबदबा कायम करने की हर संभव कोशिश कर रहा है और भारत के विरुद्ध कहीं ना कहीं वो उसके कान भी भरता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको बाकायदे अपने आर्टिकल्स में से अपने लिए जरूरत की चीजें निकालनी चाहिए। रेडियो न्यूज में, कल के रेडियो न्यूज में आपने एक बहुत ही खूबसूरत आंकड़ा सुना होगा, भले ही आपका ध्यान उधर न गया हो। वह आंकड़ा है फ्रेंड्स, देखिए चूंकि न्यूज में ये बात कही गई है तो हम उसे विश्वसनीय मानते हैं, और आंकड़ा ऐसा है भी नहीं कि जिसे आप अविश्वसनीय माने। उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई, और ये कहा गया कि भारत के में कुल 19 करोड़ परिवार हैं, 19 करोड़ परिवार। मतलब हम आबादी तो 130, 135 करोड़ की मान करके चलते हैं, और उसमें कहा गया 19 करोड़ परिवार, यानी कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं अब आप लगा लीजिए, लेकिन परिवार के बारे में बताया गया कि 19 करोड़ परिवार हैं। वो खासकर जल कितने को नल के जरिए, पाइप के जरिए पानी पहुंच रहा है, पीने का पानी पहुंच रहा है, उस संदर्भ में वो बात कही गई थी। और अब लगभग लगभग आप यूं कह लीजिए कि एक चौथाई लोगों तक, परिवार तक हमारा नल का, नल के जरिए पानी पहुंच रहा है। बकायदे जो जल जीवन मिशन है वो आप जानते हैं कि सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि बहुत जल्दी सभी लोगों तक नल के जरिए पेयजल पहुंचा दिया जाए। तो दोस्तों एक आंकड़ा, 19 करोड़ परिवारों का आंकड़ा मुझे लगता है कि लंबे समय तक आपको काम आएगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के रूप में मैं आज आप सबसे कुछ बहुत बात करने की स्थिति में नहीं हूं। चीनी उद्योग की जो समस्याएं हैं इनको लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड में बकायदे एक एडिटोरियल कमेंट छपा है, वह एडिटोरियल कमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे ही आप आज का मुख्य विषय मान लें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चीनी उद्योग की समस्याएं हैं वो सीधे सीधे गन्ना किसानों की समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। कभी कभी इस पर प्रश्न पूछे भी गए हैं, खासकर मेंस में। जो गन्ना उत्पादन है वो बड़े दोतरफा मार वाली है। पहली बात तो यह है कि जो गन्ना के किसान, जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। आप देखते हैं कि सरकार को बार बार जो गन्ना के, जो चीनी के मिल मालिक हैं उनको धन देना पड़ता है ताकि वो गन्ना के किसानों को का भुगतान कर सकें। दूसरी समस्या इससे जुड़ी हुई ये है कि जो जहाँ गन्ना का उत्पादन होता है वो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, गन्ने की खेती को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो जो भूजल है जहाँ भी गन्ना का उत्पादन होता है तो भूजल लगातार नीचे चलता चला जाता है, यानी कि जमीन बंजर हो, बंजर तो आप नहीं कहेंगे लेकिन जो वाटर लेवल है वो डाउन होता चला जाता है, तो इसका प्रभाव फिर दूसरे खाद्यान्नों के उत्पादन पर पड़ता ही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन हो रहा है, चीनी का अतिरिक्त उत्पादन होता है, चीनी की वो मिल को कीमतें नहीं मिल पाती, फलस्वरूप वो नुकसान में होते हैं। तब कोशिश ये की जा रही है कि चीनी मिल वाले क्या करें कि आत्मनिर्भर हो सके, और उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर के ही यह एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है। मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और जो दो तीन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लें। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: रिया चतुर्वेदी, कमलेश कुमार, आदित्य तिवारी, योगिता गाडेकर संगमनेर महाराष्ट्र से, और विकास यादव। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।